आज है 23 जून दिन शुक्रवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद का नामांकन भरा और कहा,
मैं जब से गवर्नर बना तब से मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है।
ईद की खरीदारी करके घर लौट रहे नौजवानों पर दिल्ली के पास चलती रेलगाड़ी में हमला, एक की मौत। कश्मीर में जामा मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस अफसर की पीट पीट कर हत्या की गई, और कैसा व्यक्तित्व था संजय गांधी का।
संजय के पास कोई जाकर ये नहीं कह सकता था कि ये नहीं हुआ। They were very scared of him. There was a fierce psychosis.
संजय गांधी की 37वीं बरसी पर सुनिएगा रिहान फजल की विवेचना, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि जब वो बिहार के राज्यपाल बने थे तब से वो किसी दल के नहीं हैं और राष्ट्रपति का भी पद दलगत राजनीति से ऊपर होता है। वोटों के लिहाज से करीब 60% समर्थन रामनाथ कोविंद के पास है। कोविंद का समर्थन कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन नहीं किया है। इस पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जेडीयू ऐतिहासिक गलती कर रही है। कतर के राजनयिक संकट में मध्यस्थता कर रहे खाड़ी देश कुवैत ने कतर को अरब देशों के साथ समझौते के लिए अपनी 13 मांगे सौंप दी हैं। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इन मांगों में न्यूज चैनल अल जजीरा को बंद करने को कहा है। इन देशों का कहना है कि अल जजीरा चरमपंथियों की आवाज है। इस आरोप को खारिज करते हुए अल जजीरा के प्रवक्ता जमाल अल शयाल ने बीबीसी को ये बताया।
Countries who are directly involved either in the creation
आरोप ऐसे देश लगा रहे हैं जो खुद इन गुटों में या इनके गठन में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। इन देशों को मिलने वाली फंडिंग में भी इनका हाथ रहा है। ये बड़ी विडंबना है। किसी पर कीचड़ उछालना आसान है, लेकिन कोई सबूत दिखाना बहुत मुश्किल। किसी ने भी कोई सबूत नहीं दिखाया है कि हमारे नेटवर्क ने कुछ गलत किया है। ये हास्यास्पद आरोप है। जमात उल शयाल के शब्द। इन देशों ने कतर से ईरान के साथ संबंध खत्म करने के साथ ही तुर्की सैन्य बेस को 10 दिनों के अंदर बंद करने को भी कहा है। इन सभी देशों ने कतर पर चरमपंथ की मदद पंथियों की मदद करने का आरोप लगाया और संबंध खत्म कर लिए थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक कार बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका एक पुलिस चेक पॉइंट के पास हुआ। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बलूचिस्तान के आईजी पुलिस एहसान महबूब के हवाले से खबर दी है कि ये धमाका गुलिस्तान रोड पर हुआ और मरने वालों में 6 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह भी खबर दी है कि अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान के खुर्रम जिले में एक भीड़ भरे बाजार में धमाका हो गया है जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा कर्मियों की झड़प हो गई है जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। ये वाकया एक एयर बेस पर हुआ है। नेशनल गार्ड्स को काराकास में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें, रबर बुलेट और गोलियां चलानी पड़ी। प्रदर्शन में विपक्षी सांसद होसे मैनुअल ओलिवारेस भी शामिल हुए। उन्होंने ये कहा, वो हमें चोट पहुंचा सकते हैं, हमें जख्मी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे इरादों को, सपनों, हमारे मूल्यों और वेनेजुएला को बदलने की इच्छा को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। वेनेजुएला को निकोलस मादुरो से बेहतर नेता मिलना चाहिए। होसे मैनुअल ओलिवारेस के शब्द। अप्रैल से अब तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की सरकार के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सड़कों पर सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई दीवारें गिराई जा रही हैं। स्थानीय लोग कंक्रीट से बनी इन दीवारों के कारण ट्रैफिक की समस्या बढ़ने की शिकायत कर रहे थे, इसलिए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शहर की 170 से ज्यादा दीवारें गिराने का आदेश दिया है। इससे सुरक्षा को लेकर खतरे का अंदेशा जताया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझा उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लालकृष्ण आडवाणी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित एनडीए के कई घटक दलों के नेताओं के साथ संसद भवन पहुंचकर कोविंद ने नामांकन पत्र भरा और बाद में पत्रकारों से बात की।
आज मैंने राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने खुद को दलगत राजनीति से ऊपर बताया।
मैं जब से गवर्नर बना तब से मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए।
ये थे रामनाथ कोविंद के शब्द। लेकिन इस चुनाव में ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता बरकरार नहीं रह पाई, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार की बजाय कोविंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। इस वजह से बिहार महागठबंधन के दो बड़े दलों यानी जदयू और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल के बीच का मतविरोध सामने आ गया है। पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दों पर केंद्र की भाजपा सरकार का समर्थन करने के बाद एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। पीए की प्रत्याशी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को समर्थन नहीं देने और राष्ट्रपति चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से अलग राह पकड़ने की वजह से बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में एक बार फिर तनाव दिखाई पड़ने लगा है। इस मुद्दे पर गुरुवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी के फैसले पर पुनर्विचार करने की नसीहत दी तो आज उन्होंने कहा कि वे एक ऐतिहासिक भूल कर चुके हैं। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि यह एक सुअवसर था धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जोड़ने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
एक मौका था, सुअवसर था सेकुलर पार्टी को एकजुट होने का। राष्ट्रपति के चुनाव में सब सेकुलर पार्टी एकजुट होकर के संयुक्त उम्मीदवार देते, वहां पर जदयू का हट जाना इसमें से भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन कर दे।
बिहार भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे नीतीश कुमार के फैसले को परिपक्व राजनीतिक निर्णय बताते और राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर आरोप भी लगाते हैं।
मैं समझता हूं कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी का यह बहुत परिपक्व राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी का चुनाव जीतना सुनिश्चित इस देश के लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद जैसे अब ऐसे लोग तय कर रहे हैं कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रामनाथ कोविंद को समर्थन किए जाने के बाद तेज हुई बयानी जंग के बीच जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन कहते हैं कि आज जब राजभवन की भूमिका पर इतनी बहस चल रही है, उस संदर्भ में बतौर राज्यपाल उनके 3 वर्षों के कार्यकाल का अनुभव एक सुखद आश्चर्य था।
रामनाथ कोविंद जी ने राजभवन की भूमिका को जिस तरीके से निष्पक्ष और निरपेक्ष बनाए रखा, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए एक सुखद आश्चर्य था। अगर ऐसे व्यक्ति को देश की बागडोर सौंपी जाए तो राष्ट्रपति पद पर जो एक गौरवशाली परंपरा इस देश की रही है उसका निर्वहन आगे भी हो पाएगा। देखिए, जो राष्ट्रीय महत्व के सवाल है उसमें पहले भी नीतीश कुमार जी जो एक परंपरागत जो तरीके हैं राजनीति के उससे अलग हट करके उन्होंने रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। महागठबंधन राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो बना नहीं था, वो एक क्षेत्रीय आधार पर जो बिहार के सवाल थे उन सवालों का समाधान ढूंढने के लिए बिहार में 3 दलों ने मिलकर के बनाया था।
रामनाथ कोविंद को समर्थन दिए जाने के सवाल पर बिहार में महागठबंधन में जुबानी तकरार के बीच एनडीए के जवाब में मीरा कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। नीरज सहाय, BBC, पटना।
BBC इंडिया बोल।
राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का सामना करेंगी मीरा कुमार। दलित बनाम दलित की इस लड़ाई में क्या कोविंद को खड़ा करके बीजेपी ने विपक्षी एकता को तोड़ दिया है? सवाल ये भी है कि राष्ट्रपति जैसे पद के लिए भी जाति और धर्म की राजनीति होनी चाहिए। इस शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में बहस इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। ईद की खरीदारी करके दिल्ली से अपने घर वल्लभगढ़ लौट रहे चार नौजवानों पर कल चलती रेलगाड़ी में कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने कहा है कि जुनैद, हाशिम, शाकिर और मोहसिन वल्लभगढ़ के खंदावरी गांव के रहने वाले हैं। खबरों के मुताबिक भीड़ ने पहले उन्हें पीटा और फिर चाकुओं से उन पर हमला किया, जिससे एक नौजवान की मौत हो गई है और बाकियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हमारे सहयोगी संदीप राय इस घटना पर नजर रखे हुए थे, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने कुछ ही देर पहले पुलिस अधिकारियों से और इस घटना के जानकार लोगों से बात की। तो संदीप, ये घटना हुई क्या, पहले तो इसकी जानकारी दीजिए।
ये घटना कल गुरुवार शाम 6 बजे की है, जब ये बच्चे बल्लभगढ़ से आए थे ईद की खरीदारी करने के लिए, और शाम को जब वो लौट रहे थे मथुरा जाने वाली ट्रेन में चढ़े, वो लोकल ट्रेन थी, और बल्लभगढ़ में से पहले तुगलकाबाद में कुछ लोग चढ़े, लोकल डेली पैसेंजर बताए जा रहे हैं। हमने पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हसन अली से बात की थी, तो उन्होंने ये इस घटना का कुछ ब्यौरा यूं दिया।
क्लास से स्टार्ट हुआ है इनका, ये लड़के आ रहे थे दिल्ली सदर बाजार से सामान खरीद के, ईद के सामान जो खरीदते हैं, अपना टोपी वगैरह, चटाई वगैरह या मेवा वगैरह लेके आ रहे थे। तो जैसे ही ओखला में गाड़ी रुकी है तो डेली पैसेंजर आके चढ़ गए हैं, उन्होंने कहा सीट खाली करो, ये वो है। कई उन्होंने ऐसे इन्होंने टोपी पहन रखी थी, उसके बाद इनकी तुतुमे में हो गई है। फिर इनको बल्लभगढ़ में उतरना चाहा था, ये उतर नहीं पाए। फिर इनका झगड़ा बल्लभगढ़ से आगे हुआ है, फिर जुनैद को चाकू मारा है, वहाँ बेहोश हो गया है। उसके बेहोश होने के बाद फिर भी चाकू मारे हैं 2-3, फिर वो डेड हो गया गाड़ी के अंदर।
ये स्थानीय पुलिस अधिकारी ने यह ब्यौरा दिया है कि जुनैद नाम के लड़के को चाकू मारा गया और उनको बल्लभगढ़ से मैं उतरने नहीं दिया गया। ये जानकारी तो पुलिस के अधिकारियों ने दी है। तो जो जो ये लोग परेशान हुए, जिनकी पिटाई हुई या जिनका कत्ल कर दिया गया, उनके घर वाले क्या कह रहे हैं, उनके जानकार लोग क्या कह रहे हैं?
जुनैद के भाई से मेरी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उनके सबसे करीबी दोस्त हाजी अल्ताफ जी ने मुझे बताया कि इन बच्चों को शुरू से ही बल्लभगढ़ से ही मारपीट शुरू हो गई थी, और जुनैद की हालत जब ख़राब हो गई थी, अटावटी पे इनको उतरने नहीं दिया गया था, बल्लभगढ़ पे उतरने नहीं दिया गया था। अटावटी पे जब इस बच्चे को उतारा गया तो प्लेटफॉर्म पे उसकी सांसें चल रही थी, प्लेटफॉर्म पे उसकी मौत हुई है। लेकिन जुनैद के पिताजी से जो मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ इस तरह का ब्यौरा दिया है।
दिल्ली गए थे शॉपिंग करने के लिए, ईद के ईद आ रही थी ना हमारी, अभी हमारी ईद है अभी 27 तारीख को, ये शॉपिंग करने के लिए दिल्ली गए थे। ये वापसी में जब ट्रेन में आ रहे थे, इनको इनको ट्रेन में मारा, गाड़ी गलौच बुरी पेश आई, मतलब कुल मिला के पूरे जो उस बोगी में आदमी थे सारे ही गलत बोले इनसे, मुल्ला कटल्ला फलाने ढमके, टोपी वगैरह इनकी फेंक गई, कुर्ता वगैरह फाड़ दिए गए, और इनको पीटा, कुल मिला के बहुत बुरी तरह मारा। और इन ये चार थे, और वो थे नहीं, वो पलवल के आसपास के हैं, और हमारा गांव है बल्लभगढ़ के पास।
इसमें कम से कम 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही जुनैद के जो भाई लोग थे उन्होंने की है, उनसे
तो 2 लोग गिरफ्तार हुए, ये पुलिस का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। ये इसी तरह की घटना कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी हुई है। कल आधी रात को नौहट्टा जामा मस्जिद के बाहर एक पुलिस अधिकारी की वहां पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मोहम्मद अयूब पंडित जम्मू और कश्मीर पुलिस में उप अधीक्षक या DSP पद पर तैनात थे। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घटना की निंदा की है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
यह थी मारे गए पुलिस अधिकारी मोहम्मद अयूब की पत्नी, जो रोते बलकते बता रही थी कि अब किस कब्र में मैं उनको ढूंढूंगी और कहां कहां ढूंढूंगी। श्रीनगर के खानियार इलाके में मोहम्मद अयूब पंडित के 3 मंजिला मकान में एकदम सन्नाटा है, जैसे यहां हर कोई सहम गया है। घर के 3rd मंजिल में दर्जनों महिलाएँ अयूब पंडित की पत्नी के आसपास बैठी हैं और उनको दिलासा देने की कोशिश कर रही हैं। मकान के बाहर लगे शामियाने में मोहम्मद अयूब के परिवार वालों के पास यहाँ लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। मोहम्मद अयूब का 27 साल का बेटा दानिश पंडित की जैसे आवाज़ ही बंद हो गई है, वो सोच में डूबे हुए हैं। पिता की मौत के चंद घंटे पहले उनके पापा ड्यूटी पर जाने से पहले सब परिवार वालों से मिलकर गए थे। दरअसल मोहम्मद अयूब की गुरुवार रात के 12 बजे के करीब श्रीनगर के नवहाटा में ऐतिहासिक जामा मस्जिद के बाहर हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मोहम्मद अयूब जम्मू कश्मीर पुलिस में DSP के ओहदे पर तैनात थे। जिस जगह उनकी हत्या कर दी गई वो जगह उनके घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस समय उनकी हत्या की गई वो पुलिस वर्दी में नहीं थे। बताया जाता है कि जब हिंसक भीड़ उन पर झपट पड़ी वो उस समय मस्जिद के बाहर तस्वीरें उतार रहे थे। तहम परिवार वालों ने इस बात से इनकार किया है कि मोहम्मद अयूब वहां किसी तरह की तस्वीरें ले रहे थे।
ये थी श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट। अगर संजय गांधी को आजाद भारत के सबसे विवादास्पद राजनीतिज्ञों में से एक माना जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आपातकाल की ज्यादतियों, परिवारवाद, मारुति कार और जबरन नसबंदी के लिए कुछ लोग उन्हें खलनायक मानते हैं तो कुछ लोग उनकी साफगोई और कुछ कर गुजरने के उनके जज्बे की तारीफ करते हैं। आज ही के दिन 23 जून 1979 को दिल्ली में एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। इस विवादास्पद नेता की 37वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन से जुड़े कई पहलुओं को आप तक पहुंचा रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
एक बार मशहूर पत्रकार विनोद मेहता से पूछा गया कि इतिहास संजय गांधी को किस तरह से याद करेगा। उनका जवाब था, इतिहास शायद संजय गांधी को इतनी तवज्जो न दे और उन्हें नजरअंदाज ही करे। कम से कम मेरी नजर में भारतीय राजनीति के पर्दे पर उनका वजूद एक मामूली ब्लिप की तरह था। ये तो रही विनोद मेहता की बात, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय राजनीति में संजय गांधी की भूमिका को दूसरे नजरिए से देखना पसंद करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे पुष्पेश पंत कहते हैं,
कहीं ना कहीं एक दिलेरी उस आदमी में थी, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बेहतरी का एक सपना भी था, जिसको आज शायद लोग याद करें तो लोग कहेंगे आप गांधी परिवार के चमचे हैं, चापलूस हैं, मगर जो परिवार नियोजन के बारे में सख्त नजरिया आपातकाल के दौरान में अपनाया गया, अगर वो नहीं अपनाया गया होता तो इस मुल्क में शायद कभी भी छोटा परिवार सुखी परिवार समझने की कोशिश नहीं की होती।
लेकिन जिस तरह से परिवार नियोजन कार्यक्रम में जबरदस्ती की गई उसने भारत के जनमानस को कांग्रेस पार्टी से बहुत बहुत दूर कर दिया। कुमकुम चड्ढा हिंदुस्तान टाइम्स की वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने संजय गांधी को बहुत करीब से कवर किया है।
किस तरह से उन्होंने कहा लोगों को, अपने जो लोगों को कैरी आउट करने में, आई डोंट नो, बट एक टारगेट ओरिएंटेड वो था कि ये टारगेट्स मीट करने चाहिए, एंड व्हेन दे वर मीटिंग दोस टारगेट्स सबको फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स थे, तो सब लोग यू नो दे वांटेड टू जस्ट प्रूव इट, दैट वाज वन पार्ट। बट ऑन द अदर हैंड संजय के पास कोई जाकर ये नहीं कह सकता था कि ये नहीं हुआ, दे वर वेरी स्केर्ड ऑफ हिम, देयर वाज अ फियर साइकोसिस। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि संजय हैड नो पेशेंस, तो उनकी डेडलाइंस हमेशा यस्टरडे होती थी, तो इसलिए अगर टारगेट्स मीट करने थे, नंबर्स दिखाने थे, तो लोगों को या जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे उनको बहुत जल्दी में करना था, और वो जल्दी एक जल्दबाजी में बदल गई विद द रिजल्ट दैट इट वेंट हॉरिबली रॉन्ग। और अगर संजय को ये लगा होता कि ये गलत हुआ है, या क्योंकि उसमें सेंसरशिप थी, कोई वहां जाकर हिम्मत नहीं करता था जो जाकर बता सकता कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक संजय वॉज इन अ मूड टू लिसन, आई डोंट थिंक ही वॉज द काइंड हु वुड लिसन, एंड आई डोंट थिंक मोर इम्पोर्टेंटली दैट देयर वर मेनी पीपल Who would even dare to tell him?
संजय गांधी पर सबसे गंभीर आरोप था इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश देना, कड़ाई से सेंसरशिप लागू करना और सरकार के कामकाज में बिना किसी आधिकारिक भूमिका के हस्तक्षेप करना। जब उन्हें लगा कि इंदर कुमार गुजराल उनका कहना नहीं मानेंगे तो उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। जग्गा कपूर अपनी किताब वॉट प्राइस परजरी फैक्ट्स ऑफ द शाह कमीशन में लिखते हैं,
संजय ने गुजराल को हुक्म दिया कि अब से प्रसारण से पहले सारे समाचार बुलेटिन उन्हें दिखाए जाएं। गुजराल ने कहा यह संभव नहीं है। इंदिरा दरवाजे के पास खड़ी संजय और गुजराल का वार्तालाप सुन रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब इंदिरा मौजूद नहीं थी, संजय ने गुजराल के मुंह पर कहा कि आप अपना मंत्रालय ढंग से नहीं चला रहे हैं। गुजराल का जवाब था, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो सभ्य और विनम्र होना होगा। मेरा प्रधानमंत्री का साथ तब का है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम्हें मेरे मंत्रालय में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है।
अगले ही दिन संजय गांधी के खास दोस्त मोहम्मद यूनुस ने गुजराल को फोन कर कहा कि वो दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर बंद करवा दे और उसके ब्यूरो चीफ मार्क टली को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उन्होंने ये झूठी खबर प्रसारित की है कि जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह को घर में नजरबंद कर दिया गया है। मार्क टली अपनी किताब फ्रॉम राज टू राजीव में लिखते हैं,
यूनुस ने गुजराल को फोन पर हुक्म दिया कि मार्क टली को बुलाओ, उसकी पैंट उतरवा कर उसकी बेत से पिटाई करवाओ और जेल में ठूस दो। गुजराल ने कहा कि एक विदेशी संवाददाता को गिरफ्तार करवाना सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम नहीं है। फोन रखते ही उन्होंने बीबीसी प्रसारण की मॉनिटरिंग रिपोर्ट मंगवाई, जिससे पता चल गया कि बीबीसी ने स्वर्ण सिंह और जगजीवन राम को हिरासत में लिए जाने की खबर प्रसारित नहीं की थी। उन्होंने ये सूचना इंदिरा गांधी तक भिजवा दी, लेकिन उसी शाम इंदिरा गांधी ने उन्हें फोन करके कहा कि वो उनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ले रही हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में इसे कड़े हाथों से चलाए जाने की जरूरत है।
जो लोग संजय गांधी के करीब थे उन्होंने इमरजेंसी के दौरान उनका पूरा फायदा उठाया और लोगों के बीच उनकी छवि खराब करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। इनमें से एक थी अभिनेत्री अमृता सिंह की माँ रुखसाना सुल्तान।
एक लेवल पे बहुत गॉसिप था। रुखसाना सुल्तान यूज्ड टू मेक इट वेरी वेल नोन, इवन टू मी शी यूज्ड टू से दैट ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। रुखसाना सुल्तान हैड अ लॉट ऑफ पावर व्हिच शी वील्डेड फ्रॉम हर फ्रेंडशिप विद संजय गांधी। उस पावर को रुखसाना सुल्तान ने बहुत मिसयूज किया, चाहे वो फैमिली प्लानिंग के उसमें था, चाहे यू नो वर्ल्ड सिटी में। सो शी वाज संजय गांधीज फेस, एंड इफ संजय गांधी वाज हेटेड इट वाज बिकॉज शी कैरिड आउट इन हिज नेम, वेदर इट वाज फैमिली प्लानिंग और यू नो व्हाटएवर। सो रुखसाना सुल्तान ड्रू स्ट्रेंथ एंड आई थिंक शी इन वन सेंस मिसयूज्ड पावर। अगर कोई दोस्त होता है एंड इफ योर फ्रेंड इज डूइंग इनकरेक्ट, आई थिंक दैट वाज संजय गांधीज बिगेस्ट मिसफॉर्च्यून। कोई नहीं था उनके फ्रेंड्स में जो उनको उठ के कह सकता कि नो दिस फार एंड नो फर्दर, यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट।
संजय गांधी की आम छवि कम बोलने वाले मुंहफट शख्स की थी। इनके मन में अपने सहयोगियों के लिए कोई इज्जत नहीं थी, चाहे वो उनसे उम्र में कितने ही बड़े क्यों ना हो। लेकिन एक जमाने में संजय गांधी के करीबी और यूथ कांग्रेस के नेता रहे जनार्दन सिंह गहलोत बताते हैं।
उस व्यक्ति में रफनेस कतई नहीं थी, वो स्पष्टवादी जरूर थे, जो सही मायने में इस देश की जनता आज के स्पष्टवादिता की अब तक तो स्वीकार कर नहीं पाई है। और आज जो चापलूसों का जमाना है, जो चापलूसी करते हैं, मीठी बात करते हैं, जो हर पॉलिटिशियन एक दूसरे को भ्रम में डालकर उसे गुमराह करते हैं, मैं सोचता हूँ उससे वो हटके अलग था। इसलिए उनकी इमेज इस ढंग की बनती रहती थी कि ये रफ है, रफ वफ तो नहीं थे, लेकिन ये है जो बात उनको ठीक लगती थी वो कह देते थे कि नहीं आप ठीक नहीं कर रहे हो और आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं नहीं मानता कि आप ठीक कर रहे हो। देश के लोगों ने बाद में स्वीकार ही किया कि उनकी जो पांच सूत्री कार्यक्रम था शायद वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे।
इसी तरह की बात संजय गांधी के एक और सहयोगी रहे संजय सिंह कहते हैं, जो एक बार अमेठी से सांसद रह चुके हैं और इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं।
दो तीन क्वालिटीज उनकी बहुत अच्छी हमें लगी। एक, बड़ी साफ बात करते थे और स्पष्टवादिता थी और बड़े सौम्य थे, बड़े वेल बिहेव थे, और एक प्रयास करते थे कि कम से कम बात हो लेकिन मैसेज ठीक से लोगों को समझ में आ जाए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज थी कि कोई चीज स्वयं जब कहते थे हाँ तो उसको करने का पूरा प्रयास करते थे और उसी तरह आशा करते थे कि कोई भी जो बात करे उसको पूरा करे।
संजय गांधी की इस नकारात्मक छवि बनाने में उनकी तथाकथित रूखे व्यक्तित्व ने बड़ी भूमिका निभाई। विनोद मेहता संजय गांधी पर लिखी अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखते हैं,
एक अकबर रोड पर संजय का दिन सुबह 8 बजे शुरू होता था। इसी समय जगमोहन, किशन चंद, नवीन चावला और PS भिंडर जैसे अफसर संजय को अपनी डेली रिपोर्ट पेश करते थे। इसी समय वो संजय से आदेश भी लेते थे। इनमें से ज्यादातर लोग उन्हें सर कहकर पुकारते थे। जगदीश टाइटलर बताते हैं कि संजय बस एक दो शब्द ही बोलते थे, मैंने उनको कभी चिल्लाते हुए नहीं सुना। उनके आदेश क्रिस्टल की तरह साफ होते थे। उनकी याददाश्त बहुत जबरदस्त थी। ठीक 8:45 पर वो अपनी मैटाडोर में बैठकर गुड़गांव में मारुति फैक्ट्री के लिए रवाना हो जाते थे। वो समय के इतने पाबंद थे कि आप उनसे अपनी घड़ी मिला सकते थे। ठीक 12:55 पर वो दोपहर का खाना खाने घर लौटते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी के आदेश थे कि दिन का खाना परिवार के सब लोग साथ ही खाएं। दोपहर 2 बजे से उनका लोगों से मिलने का सिलसिला फिर से शुरू होता था। इस बार उनसे मिलने वालों में केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और यूथ कांग्रेस के नेता होते थे। उन्हें मिलने का जो वक्त दिया जाता था वो कुछ इस तरह का होता था, 4:07, 4:11 या 4:17। जब कोई कमरे में घुसता था तो न तो वो उसके स्वागत में खड़े होते थे और न ही उससे हाथ मिलाते थे।
नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तिवारी मानते हैं कि संजय को बिना वजह बदनाम किया गया और उनके योगदान को कम करके आंका गया।
संजय गांधी का 4 सूत्री प्रोग्राम था, वो आज सभी लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल सही और व्यवहारिक था। जैसे उनका था परिवार नियोजन के बारे में कि बिना परिवार नियोजन के भारत की गरीबी कम नहीं हो सकती, इसी तरह पेड़ लगाने का आंदोलन, इसी तरह इंडिजनाइजेशन का कि अपने यहाँ से बनना चाहिए, जैसे उन्होंने मारुति को एक अपने एक वर्कशॉप में ठोक बजा करके कोशिश की कि हम भारतीय अपने बल पर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके या दूसरी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा सुधार करके अपनी कार बनाए। ये मारुति कार जो है, जो कि अब यहीं बन रही है 100% और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही बहुत बड़े पैमाने में, तो ये मारुति प्रकार से उनकी याद में बनी हुई कही जा सकती है।
आम लोगों के मन में संजय गांधी की छवि एक मैन ऑफ एक्शन वाले शख्स की है, जिसके पास धीरज की कमी थी। आम धारणा के खिलाफ वो शराब सिगरेट तो दूर, चाय पीना तक पसंद नहीं करते थे।
उनका एक शौक था कि वो गाड़ी बहुत तेज चलाते थे। तो एक बार हम और अंबिका सोनी और संजय गांधी तीनों पंजाब के टूर से आ रहे थे। उनकी एक आदत थी, वो खुद अपनी गाड़ी चलाते थे और हालत ये थी कि हमारे हाथ पैर फूल रहे थे, हमको डर लग रहा था कि गाड़ी एक्सीडेंट होगी। वो इतना फास्ट चलाते थे गाड़ी को, इसलिए हमें उनको बार बार हम टोकते, उनका डरते हो क्या? वो प्लेन जिस दिन वो उड़ाने के लिए गए थे, मुझे मालूम है मेनका जी ने जाके इंदिरा जी को कहा कि वो प्लेन उड़ाने जा रहे हैं, कि कल भी इन्होंने गोता खाए थे तो आज इनको रोका जाए। तो जब तक इंदिरा जी बाहर रोकने गई, जब तक वो अपनी मेटाडोर खा के निकल चुके थे और उसी दिन ये हादसा हो गया। उस व्यक्ति के रहन सहन और उनकी जो सादगी थी, लोग चाहे उनके बारे में कुछ भी कहते थे, वो कैंपा कोला पेप्सी तक पीना पसंद नहीं करते। लोगों को एडवाइस करते, पान क्यों खाते हो, ये सुपारी क्यों खाते हो, मत खाया करो, ये मत किया करो। तो मैं सोचता हूँ कि उस आदमी का अपना एक अलग सोच था, एक देश के नौजवानों को अलग ले जाना चाहते थे और उसमें सादगी का जहां तक प्रश्न है, मैंने कभी उन्हें कोई बहुत कुछ पहने हुए या कोई जो एक साधारण कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति के तौर से मैं कहूँ कि अगर जो कहता था वो करता था, जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी उनका वही काम था। ऐसा नहीं कि आज हम देखते हैं पॉलिटिशियन दिन में कुर्ता धोती पहनते हैं, शाम को टी शर्ट में घूमते हैं।
संजय गांधी के साथियों की यह कहकर आलोचना की जा सकती है कि वो सुसंस्कृत और बौद्धिक नहीं थे और शायद उनमें गंभीर भी नहीं था, लेकिन उनकी संजय के प्रति लॉयल्टी में कभी भी कोई कमी नहीं आई, खासतौर से तब जब सारा भारत उनके खिलाफ हो गया था।
कमलनाथ इज वन मैन हु इवन व्हेन मिसेस गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर एंड इयर्स आफ्टर संजय'स डेथ ऑलवेज हैड संजय'स फोटोग्राफ इन हिज रूम एंड आई रिमेंबर आई हैड आस्क्ड हिम वंस, आई सेड यू नो ही इज डेड एंड गॉन, नोबडी वांट्स टू इवन टॉक ऑफ हिम टुडे। उसके बाद संजय एक बड़े अनटचेबल हो गए थे। सो आई सेड बट यू नो यू गॉट दिस पिक्चर हियर, तो उन्होंने हमसे कहा कि मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर है मेरी, पर संजय वॉज माई फ्रेंड एंड माई लीडर। एक ब्लाइंड लॉयल्टी अफेक्शन बहुत लोगों का था उनके प्रति।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान फजल की इस विवेचना पर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार रहेगा। अब समय बहुत कम बचा है, खेल प्रेमियों के साथ आज थोड़ा ज्यादती हो गई है। राखी शर्मा मेरे सामने बैठी हैं, खेल की खबरें तुरंत बता दीजिए।
जी बिल्कुल, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। फिलहाल भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, जिसने अब तक 20 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए 96 रन बना लिए हैं। अजिंक्य रहाणे 48 रन, जी बिल्कुल मैं बताती हूँ, शिखर धवन 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ी के श्रीकांत ने जगह बना ली है, उन्होंने हमवतन बी साई प्रणीत को हराया। लेकिन महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल को क्वार्टर फाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा। जहां तक बात है हॉकी की, तो वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल्स खेला जा रहा है, जिसमें कल भारतीय टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा।
जी, मुझे यहीं आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी अब आपसे विदा चाहता हूँ। अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।